आत्मभावना लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्मभावना नामक ये जो शास्त्र है वो समाधि तंत्र शास्त्र के ऊपर जो कांजी स्वामी ने प्रवचन दिए हैं उसी को यहाँ लिखित रूप से लिया हुआ है। आत्मभावना के 22 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं। समाधि तंत्र में से हमने 5 नंबर का श्लोक भी पढ़ा था, उसका अर्थ, उसकी टीका और उसका भावार्थ भी देख लिया था, विशेष जो कहते हैं उसको भी देख लिया था। अब उस पर जो प्रवचन है उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। आत्मभावना में से 22 नंबर का पृष्ठ है। कल हमने 2 बार पढ़े थे श्लोक, अभी उसके नीचे, श्लोक के नीचे वहां से पढ़ेंगे। शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्मानी भ्रांति जे करे छे ते बहिरात्मा छे। आत्मानी भ्रांति करे छे ने उसको आत्मा मान लेते, उसको यह मैं हूं ऐसा मान्यता है, विपरीत मान्यता है, उसको भ्रांति कहा। अने राग द्वेषादि दोष तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा तेमना संबंध में जे भ्रांति थी रहित छे ते अंतरात्मा छे। उसके संबंध में भ्रांति नहीं होना, राग को राग रूप यानी राग द्वेष को दोष रूप स्वीकार करना और आत्मा को आत्मा रूप चैतन्य रूप स्वीकार करना, ये उसके भ्रांति से रहित पना है। जे रागादि दोष ने दोष रूप जाने छे, यहाँ तो जीव क्या करता है, शुभ राग को तो दोष कहने के उसके हिम्मत नहीं होती है ना अच्छा मानता है, वो दोष नहीं लगता उसको, वो नहीं कर रहा हूँ तो करना चाहिए। देखो प्रवृत्ति की बात अलग है, उपदेश में उसको ऐसा उपदेश भी देंगे प्राथमिक जीवों को सदाचरण से रहने के लिए, देव दर्शन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, परंतु वो भी राग है, पुण्य परिणाम है, बंध का कारण है, पहले वो दोष है, पहले स्वीकार में होना चाहिए।
देखो अनेक तरह से हम जिसका विचार करते हैं, पहले राग जो है यानी पुण्य परिणाम या पाप परिणाम, ये कौन सा तत्व है, तो कहते आश्रव तत्व है। और आश्रव तत्व में जो कोई शुभ अशुभ परिणाम है इन सबको लिया है, मोह को भी लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जीव तत्व और आश्रव तत्व ऐसे दो भिन्न भिन्न तत्व बताए हैं, तो उसमें कोई भिन्नत्व है, इसीलिए तो 7 तत्व बताए। तब हम ये नक्की करते हैं कि ये आश्रव तत्व जो है वो कैसा है, तो कहते हैं हेय तत्व है, और उसमें हम हमारे अपने सहूलियत के लिए एक को अच्छा एक को बुरा मानते हैं। समय सार में तो ऐसा बताया है ये चांडालनी के पुत्र है दोनों, उसमें अच्छा बुरा क्या है, गजब है वहां तो। यानी यहां यही बात, आज हम गए थे एक जगह वहां पर यही बात चल रही थी, बोला अरे शुभ तो अच्छा ना, बोला अच्छा किस बात, दोनों ही बंध के कारण है, तो जो बंधन कराए वो अच्छे कहाँ से आए, हमें तो मुक्तता चाहिए कि बंधन चाहिए, ये पहले नक्की करें ना। हाँ चलो,
लोगों की तो यहाँ तक की मान्यता है कि शरीर के कारण बंध हो रहा है, शरीर बंधन का, शरीर नहीं है बंध का कारण, शरीर रूप मैं हूँ ये मान्यता बंध का कारण, उसको मैं माना तो उसके बाह्य पदार्थों में इष्टता अनिष्टता चालू हो जाती है, राग द्वेष शुरू हो जाते हैं, यही बंध के कारण है। शरीर ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं, वो तो जड़ अचेतन है, वो शरीर जीव का कुछ नुकसान नहीं कर रहा, जीव स्वयं अपना नुकसान कर ले रहा है। अचेतन जो वस्तुएं हैं उसको मैं हूं, ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, ये मेरे है, ये उसकी मान्यता है।
महादेव ऐसा बोलेगे शरीर है वो आत्मा का गुणों का नाश करता है, क्या बोले अभी?
और ये टीवी पर सुना उन्होंने। अब जैनी होकर भी उसका निर्णय नहीं है कि कौन कह रहा है क्या कह रहा है, उसको गुरु की श्रद्धा, देव गुरु की उसकी कैसी श्रद्धा है, उसको सुनने योग्य है कि नहीं हुए। जो अच्छा लगा तो सुनने के मोह में कुछ भी लगा के सुनते रहते हैं और मानते देखो बहुत अच्छा है तुम भी सुनो, मतलब हमको सुनने की आवश्यकता नहीं। हाँ तो अभी मिली है उसका क्या? मैं तो कही तो अभी पुण्य से मिली ना आपको, अभी ये फिर मिथ्या नया मिथ्या तो करके क्यों बनाना चाहते?
वही हो गई ना, अगले भाव की जिसकी वांछा है उसके आनंद भाव की वांछा है। चलो आगे बढ़ो।
देखो देखो
ये तो इतना ऐसा
ये भ्रांतियाँ इतनी है।
एक मिथ्यात्व के बारे में जितना बोलो उतना कम है, और राग द्वेष के बारे में शुभ अशुभ परिणाम पुण्य पाप परिणाम इसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। इतनी भ्रांतियाँ अलग अलग पर जिसको कहते रूप में सामने आती है। चलो
देखो यहाँ क्या कहते हैं, राग द्वेषादि दोष तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा तेमना संबंध में जो भ्रांति थी रही थी उनका संबंध ने राग के बारे में उसका कोई भ्रांति नहीं है और चैतन्य स्वरूप आत्मा के बारे में कोई उनका संबंध ने आपस में संबंध नहीं लगाना है उनका, उस बाबत में इनको कोई भ्रांति नहीं है ऐसा नहीं। ते अंतरात्मा छे जे रागादि दोष ने दोष रूप जाने छे ने पोताना चैतन्य स्वभाव ने स्वभाव रूप जाने छे तेने रागादि मां आत्मा नी भ्रांति थती नथी। मैं राग रूप हूँ ऐसी उनकी बिल्कुल भ्रांति नहीं है। जो अपने को राग रूप मानता है फिर वो राग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको कम करना चाहिए, उसको इस ये राग नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये बातें चालू हो जाती है। तो कहते उसके आत्मा नहीं भ्रांति थती नहीं, ने मलिनता थी भिन्न, ये रागादि मलिनता है ना उससे भिन्न पोताना शुद्ध स्वभाव ने जे निशंकपने जाने छे ते अंतरात्मा चाहिए। निशंक उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई ये ऐसा होगा कि नहीं कि ऐसा होगा ऐसे कुछ मनगढ़ंत तो कोई कल्पना नहीं होती उनकी। अने जे अत्यंत निर्मल छे जेमना रागादि दोष सर्वथा टळी गया छे ने सर्वज्ञ परमपद जेमने प्रगटी गयु छे ते परमात्मा छे। ए प्रमाणे त्रण प्रकारना आत्मानो स्वरूप जानू, यानी उन्होंने तीनों के लक्षण यहाँ बता दिए। आ शरीरादि जड़ पदार्थो प्रगटपने आत्मा थी जुदा छे, ते कोई पदार्थो आत्माना नथी, आत्मा थी बाहर ज छे। ये जीव द्रव्य के अंदर उनका प्रवेश ही नहीं है, छता तेने जे पोताना माने छे ते जीव बहिरात्मा छे। ऐसा होने पर भी उसको अपने मानता है। आ शरीर मारू, हूँ देव, हूँ मनुष्य, हूँ पुरुष, हूँ स्त्री, हूँ धोळो, हूँ काळो, हूँ रागी, हूँ द्वेषी, आ शरीर ना कार्य हूँ करू छू, अने शरीर आदि ने क्रिया माथी मने अहित अहित थाय छे। देखो क्या कहते, शरीर की क्रिया करने से, अमुक क्रिया करने से मुझे फायदा होगा, ये क्रिया करने से मेरा बुरा होगा, यानी शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये विपरीत मान्यता एक बात। दूसरी बात, उससे मेरे हित अहित होता है, ये दूसरी बात, यानी ये सारी भ्रांति भ्रांति। फिर से देखो क्या क्या कहना चाहते हैं कि ये जो क्या मानते हैं, शरीर मारू। अब शरीर मारू तो जिस पर्याय में जन्म लिया है, अब देव पर्याय में जन्म लिया यानी देव हुआ है, तो मैं देव, मैं मनुष्य, मैं नारकी, ऐसी मान्यता करता है। फिर उसमें भी मनुष्य हुआ, मैं पुरुष, मैं स्त्री, अब उसमें उसके और जितना पढ़ाई किया, डॉक्टर हुआ तो मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं अभी वो तो उसकी चलती रहती ना, मैं पना किसमें किसमें स्थापित करेगा। थोड़ा सियाना हो गया, मैं पंडित, मैं होशियार, अभ्यास किया ना थोड़ा, तो कहते हैं कि और फिर शरीर के जो वर्ण आदि है मैं गोरा मैं काला, फिर जो राग द्वेष के परिणाम है वो अपना स्वरूप मानता है, तो मैं रागी मैं द्वेषी, मैं बहुत क्रोधी हूँ मैं बहुत शांत हूँ, ये क्या माना उसने, राग द्वेष के परिणाम को उस रूप मैं हूँ मान लिया। आ शरीर ना कार्य हूँ करूँ छू, ये बोलने की चालने की जो शरीर की क्रिया है मैं उसका करता हूँ, ऐसे कहते हैं। और उसका उदाहरण भी देते, वो खिलौने में जब तक वो बैटरी तब तक वो हलचल करता है, वो बैटरी निकल जाए, जैसे जीव इसमें से निकल जाए तो शरीर की क्रिया नहीं होती, तो देखो जीव कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसी दलील भी कर रहे हैं।
ये हम दुबई में गए थे जब,
हाँ तो उसने भी एक कैसे
2001 में
2002 में गए थे, आ शरीर ना कार्य हूँ करू छू ने शरीर आदि ने क्रिया माथी मने हित हित था, एम मानना जो ये मान्यता में सारे दोष पड़े उसके। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि छे, केम के पोताना आत्मा ने बाह्य पदार्थों थी भिन्न नथी जानतो, जो भिन्न है उसको भिन्न नहीं जान रहा नहीं मान रहा, पण बाह्य पदार्थों ने ज आत्मा माने छे, आवा लक्षण थी बहिरात्मपणु ओळखी ने ते छोड़वा जेवू छे।
हाँ
बहिरात्मपणु छोड़वा जेवू छे, एने ओळखी ने छोड़वा जेवू छे, ये कहते ना चढ़ाला में भी लिखा है, ताको तजिए सुजान, ताको एने मिथ्यात्व को, पहले ढाल में तो उन्होंने बताया सारा क्या क्या है और ये सारे दुख क्यों है, तो मिथ्यात्व के कारण है, तो उसको अच्छी तरह से जानकर छोड़ना चाहिए, यही बात यहाँ पर बता रहे। देह थी भिन्न अने रागादि थी पार, देखो देह थी भिन्न क्योंकि उसके प्रदेश ही भिन्न भिन्न है, दो भिन्न द्रव्य ही है, पर राग तो अपनी पर्याय में है, तो यहाँ कहते रागादि से पार। मारो आत्मा ज्ञान ने आनंद स्वरूप छे, एम अंतर मा आत्मा ना परमार्थ स्वरूप ने जे ओळखे छे ते अंतरात्मा छे। देखो पर्याय में ज्ञान भी हो रहा है पर्याय में राग भी हो रहा है, पर राग ऐसा हावी हो गए कि उसको मुझे ज्ञान हो रहा है जानने वाला मैं हूँ इस बात को भूल जाता है, और अपने को राग में ही अनुभव कर रहा है कि मैं रागी द्वेषी हूँ, उसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना कहा था ना, यही बात यहाँ कह रहे। तो इसमें से अपने को ज्ञान आनंद स्वरूप अलग से पहचानना, उसको परमात्मा स्वरूप ने जो ओळखे छे ते अंतरात्मा छे, आवा लक्षण थी अंतरात्मापणु ओळखी ने ते प्रकट करवा जेवू छे, बहिरात्मापणु ओळखी ने छोड़वा जेवू छे, अंतरात्मापणु ओळखी ने प्रकट करवा जेवू छे, अने समस्त दोष थी रहित आत्मानु पूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप प्रकटे ते परमात्म दशा छे, ते परम उपादेय छे। आ श्री पूज्यपाद स्वामी रचित समाधि शतक वंचाय छे, आत्मा ने समाधि केम थाय अने मोक्ष सुखनी प्राप्ति केम थाय तेनो उपाय बतावे छे। देखो जीव को तो केवल मरण का समय आया तो मुझे समाधि मरण चाहिए लगता है, जिसका जीवन समाधिमय होगा वही उसी का मरण समाधि युक्त होगा, नहीं तो मरने के समय जैसे कोई सुनामी जैसा महापूर आया और तैरना सीखना लगे तो कैसे हो सकता है, वो तो बह जाएगा उसके अंदर।
समाधि मरण यानी क्या, ये नहीं समझे,
समाधि मरण का अर्थ ही नहीं समझते, समाधि मरण किसको मान लिया, हमने वो सारी चीजें त्याग कर दी, हम बेड पर सोए थे हमने वो त्याग करके चटाई पर आ गए, हमने बाकी सब दवाई वगैरह सब छोड़ दिए, अभी हमने कह दिया हमने आप अभी हमको आहार का त्याग है, तो हम सब त्याग करके मर गए तो हमने समाधि मरण साधा, ऐसी मान्यता चलती है लोगों में। हमने तो यहाँ तक देखे है कि कोई कोमा में है कुछ उसको कुछ सुध नहीं है और उसको ऊपर से उसको नहीं तुझे अभी 4 घंटे का ये त्याग है करके नीचे सुला लेते, उस जीव के अपने परिणाम होना अलग बात है, और केवल हमने उस पर कुछ ऐसे बाहर से बोल दिया और उसका त्याग करा दिया, ये ऐसे ऐसी मान्यता चलती है और हमने देखे हमने आंखों से, समाज में ऐसी बातें चल रही है, क्या करें।
एक्चुअली समाधि मरण यानी क्या,
एक्चुअली समाधि मरण यानी जो सम्य दृष्टि है उसने आत्मा को भिन्न जान लिया है, भले वो शुद्धोपयोग में नहीं होगा तो भी उसका समाधि मरण कहलाएगा वो। हाँ, ये शुद्ध, हाँ उसके को समाधि मरण होगा, क्योंकि उसने देखो उसने तो समाधि का स्वरूप यानी अपने आत्मा में उन्हें अनुभव पूर्वक उसने जान लिया है, तो मरण के समय में नेचुरली उसके और वहां पर पुरुषार्थ और लगेगा, उसको मरण का भय नहीं है एक बात, और सामने मरण दिख रहा है तो ठीक है, वो क्या है अभी देह परिवर्तन होने वाला है उसमें क्या है, और अगर वो सही रूप से जानता है तो एक समय के अंदर दूसरी पर्याय होने ही वाली है, और वहां तो नया शरीर होगा और वो तो स्वयं जीव को जीव स्वरूप है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर भी जन्म क्यों ना हो, भले पहले आयु बांध दिया बाद में समय दृष्टि हुआ कोई बात नहीं, जहां जाएगा वो तो उसका बना रहेगा, यानी उसको ऐसा डर नहीं अभी मेरा क्या होगा। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ऐसा अशुभ उपयोग किस प्रकार से अभी हम कह सकते हैं के हाँ धारणा में मत कहो, केवल धारणा नहीं, केवल लब्धि और ये इसमें नहीं होते, वो तो उसके यानी उसके तो अनु परिणति उसकी चल रही है ना, जैसे ज्ञान चेतना को हम लब्धि और उपयोग लगा सकते हैं ज्ञान चेतना के लिए, यानी उसने जो भिन्नता का ज्ञान कर लिया है वो भले शुद्ध उपयोग में है या शुभ उपयोग में है उसके वो भिन्नता का ज्ञान चलता है। हाँ हो सकता है, शुद्ध में भी हो सकता है, शुभ में भी हो सकता है, अशुभ में हो सकता है। अभी देखिए अभी नरक में जाने वाला क्षायिक समय दृष्टि है, क्षायिक समय दृष्टि है, नहीं क्षायिक समय दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्षायिक है ना जैसे क्षणिक राजा, छूटेगा कैसे, क्षायिक है ना, क्षायिक तो छूटता नहीं है, और मरण उनका कपोत लेशा में हुआ है, हाँ क्योंकि ऐसा आता ना वो या तो उन्होंने आत्मघात किया या कुछ ऐसे संक्लेश परिणाम में मरण हुआ, जहाँ जन्म लेना है उसी रेशा में वहाँ मरण होता है, जो देव में उत्पन्न होने वाला है उसके शुभ रेशा में मरण होता है। अब जो ऑर्डिनरी अभी पंचम काल का मनुष्य तीर्यंच है, सम्य दर्शन हुआ है, तो सम्य दर्शन के साथ जाएगा तो देव में ही जाएगा, देवायु बांधी हो तो, अन्य आयु बांधी होता तो सम्य तो छूट जाएगा उसका, क्योंकि समय तो लेके तो तीर्यंच नहीं होगा यहाँ से, समय तो लेकर यहाँ से वो मनुष्य नहीं होगा ना, भोग भूमि का हो सकता है, उसके लिए क्षायिक की आवश्यकता है, नरक में भी यह ऑर्डिनरी समय तो लेकर नहीं जा सकता, उसके लिए भी क्षायिक की आवश्यकता है, ऐसे करना नहीं होगा, कुछ नियम है अभी यथा योग्य हर एक जीव का अलग अलग हक हो सकते हैं, वो मरण के भय से नहीं, वो मरण का भय नहीं है जैसे समय दृष्टि के हो तो, परंतु ऐसा उसको लगा कि मुझे मारने आए इसलिए ऐसा पीछे हो गया और जो ऐसा जिसको कहते हैं गिर कर मर गया ऐसा भी आता है इसमें। हाँ अभी हम आए हैं 22 नंबर के पृष्ठ पर आत्म भावना के, हाँ अभी हम आगे बढ़ेंगे,
गिरेगा गिरेगा आगे लगा आगे।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, समाधि के ऊपर से बात निकली थी, नीचे से तीसरी लाइन, फिर आश्री पूज्यपाद स्वामी रचित समाधि शतक वंचाय छे, आत्मा ने समाधि केम थाय अने मोक्ष सुखनी प्राप्ति केम थाय तेनो उपाय बतावे छे, अनादिकाळथी जीव संसारमां परिभ्रमण करी रह्यो छे, परिभ्रमण वो जन्म मरण कर रहा है, तेनुं कारण अज्ञान अने असमाधि छे, ये उसी का अपराध है और किसी के कारण वो घूम रहा ऐसा नहीं है, ते केम छूटे अने सुख तथा समाधि केम थाय ते बतावी छे, इसमें से छूटने का मार्ग भी उसी के पास है, वो स्वयं ही करेगा, किसी ने ना उसको अटकाया है, परिभ्रमण कराया है, और ना कोई उसमें से निकाल के उसको मोक्ष ले जाने वाला है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप छे तेने भूली ने बाहर मां देह मन वचन तथा रागादि तेज हूँ छू एवी बहिरात्म बुद्धि ने लीधेज अज्ञानी अनादिकाल थी संसार मां परिभ्रमण करी रहा छे। देह मन वचन उस रूप में हूँ, उसकी जो जो अवस्था होती है ये मेरी अवस्था है ये मान मान कर वो उसमें या तो हर्षित हो जाता है या दुख मानता है। देहादि की भिन्न ने रागादि दोषों की भिन्न शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप हूँ छू एवी आत्मा नी ओळखान करीने अंतरात्मा थऊं ते भव भ्रमण थी छूटवानो उपाय छे। ये ओळखान नी उसको पहचानना है, ये पहचानना वो भी उसके लक्षण द्वारा पहचानना है। ज्ञान तो उसका प्रकट लक्षण है, तो अपने में जानना 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 ये तो चल रहा है, और अपने अस्तित्व का एहसास मैं हूँ ये बात उसको किसी को पूछना नहीं पड़ती। जिसको कहते हैं आबाल गोपाल सबके अनुभव में आती है, क्या अनुभव में आ रहा है कि मैं हूँ। भ्रांति किस बारे में
है?
नहीं मैं कौन हूँ मैं हूँ इसकी गारंटी 100% वो किसी को ये प्रश्न नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ इसका एहसास इसकी गारंटी सबको है। परंतु मैं कौन हूँ देखा तो मैं शरीर हूँ, ये रागादि मैं हूँ ये उसने मान लिया। मैं हूँ के नहीं ये किसी को पूछना नहीं पड़ता है, मैं कौन हूँ इस संबंध में भ्रांति है, यही उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप छे तेने भूली ने बाहर मां देह मन वचन तथा रागादि तेज हूँ छू एवी बहिरात्म बुद्धि ने लीधेज अज्ञानी अनादिकाल थी संसार मां परिभ्रमण करी रहा छे। उसने ये पहचाना नहीं अपने को, इसलिए उसकी भ्रांति चल रही है और उसके कारण उसका जन्म मरण हो रहा है। देहादिति भिन्न ने रागादि दोषोती भिन्न शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप हूँ छू एवी आत्मानी ओळखान करीने अंतरात्मा थऊं ते भव भ्रमण थी छूटवानो उपाय छे। और इसने उपाय के तौर पर मान लिया कि मैं इतना करूंगा, मैं इतना उपवास करूंगा, मैं इतना दान दूंगा तो मुझे ये जल्दी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये उसने उपाय के बारे में भी उसकी भ्रांति है, मैं थोड़ा त्याग करूंगा व्रत अंगीकार करूंगा तो मुझे मैं जल्दी इसमें आगे बढ़ सकूंगा, ये कहीं ना कहीं अभिप्राय में पड़ा है।
यहाँ तो क्लियर कट बताया है कि रागादि दोष है और उससे भिन्न में है और ये दोष करके निर्दोष अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं,
यानी शुभ भाव से मेरा कल्याण हो, मान्यता की बात है। बारंबार ये कहने में आता है कि कहीं पर अभी ये प्रवृत्ति तो शुभ रूप होगी उसकी, क्योंकि अभी तो स्वाध्याय में जाएगा, वो तो दया दान आदि भी उसके होंगे, ये सभी बातें होगी। मान्यता में क्या लेना है, क्या स्वीकार करना है, उसकी बात चल रही है। ये मान्यता का दोष है तो मान्यता में दोष सुधारना पड़ेगा, ये उसकी बात चूक जाती है तो ये प्रवृत्ति की बात। जब मान्यता की बात आती है तो वो प्रवृत्ति को सुधारना चाहता है। अभी पुण्य से कुछ नहीं होता ना, मैं पुण्य छोड़ दूंगा, पहले पाप छोड़कर पुण्य कुछ क्रिया अंगीकार करना चाहता था, अब उसने सुन लिया कि ये भी बंध का कारण है, इसको भी छोड़ दूंगा। अरे इसको भी प्रवृत्ति में जो ये कुछ एप्लीकेशन वाली दवा लगाई थी लगाने की, वो हमने खा ली, क्या होगा? लिखते ना ऊपर ओनली फॉर एप्लीकेशन नॉट टू फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और हमने खा ली, वहां तो बराबर चौकन्ना रहता है। यहाँ प्रवृत्ति की बात अलग है, मान्यता की बात अलग है। जानने के लिए तो सब कुछ है, जानने के लिए वो स्व को भी जानेगा, राग को भी जानेगा, शरीर को भी जानेगा, परद्रव्य को भी जानेगा, जो जैसा है उसको वैसा जानेगा। मान्यता में क्या मानता है, मान्यता का अर्थ है स्व किसमें स्थापित करना, जो स्व है ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा उसी को मैं हूं ऐसी मान्यता करना, उसका कहेंगे ये मान्यता हुई, ये श्रद्धा हुई। अभी तक तो पर चीज में यह मैं हूं मान रहा था, वो छोड़कर जो असली मैं हूं उसी में मैं पने की बुद्धि करना, यही मान्यता सुधरी उसकी। प्रवृत्ति यानी चारित्र में कोई भी वृत्ति का उठना, वृत्ति का उठना यानी पुण्य पाप का परिणाम उठना, ये राग है और ये बंधे का कारण। जब ऐसी वृत्ति उठेगी ही नहीं, वितरागता होगी, तब हम कहेंगे वो अबंध दशा है, जिसको हम शुद्ध भाव कह रहे हैं। वो तो क्रम से, वो तो पहले अनंतानुबंधी जैसे भाव उठते थे, वो नहीं होंगे। एक एक कषाय चौकड़ी का अनुदय होता है या अभाव होता चला जाएगा।
यहाँ इस वाक्य में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसा करना है, इसका भी निर्देश
हर एक वाक्य के वाक्य में यही बात आ रही है कि सम्यक की प्राप्ति कैसी
करनी। ये तो भव भ्रमण से छूटने का उपाय है, क्या है भैया? अंतरात्मा बनूं, अंतरात्मा कैसा होगा? तो कहते हैं कि देहादि से मैं भिन्न हूँ और रागादि से भिन्न हूँ, पर कुछ है कि नहीं? भिन्न है तो सब खाली हो गया नहीं? तो कहते हैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, और हमने अपने को दुखी ही माना है, आनंद स्वरूप कभी माना ही नहीं है। हम 24 घंटे सुखी होना चाहते हैं। अरे तू स्वभाव से सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उसी में एकाग्र होगा तो पर्याय में सुख और आनंद आने वाला है। तो वो तो नहीं करना चाहता, मानना नहीं चाहता कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये दो बातों पर पूरा खेल है ये आत्मभावना का, कि मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, और हम ज्ञान दूसरे से लेना चाहते हैं और सुख भी दूसरे से पैदा करना चाहते हैं। यहाँ तो कहते तू स्वयं उस रूप हो, और ये जब तेरी निश्चित मान्यता होगी तो एव्या एवी आत्मा ने ओळखान करीने, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जब ओळखान हुई तो अंतरात्मा हुआ, और अंतरात्मा हुआ तो उसका भव भ्रमण छूटने का उपाय भी उसके हाथ में आया। वो तो कितनी हर एक शास्त्र में आता, मोक्ष माननी प्रथम सीढ़ी, इतना मतलब गहरी बातें हैं एक एक वाक्यों में।
गृहस्थपणामा रहेलो जीव पण ज्ञानानंद स्वरूप आत्मानु भान करीने अंतरात्मा थई शके छे, क्योंकि अंतरात्मा हमने चौथे गुणस्थान से बारहवें तक देखे, सारे अंतरात्मा है, तो अर्लिए शुरुआत उसकी चौथे गुणस्थान से होगी। ये तो अविरत समय दृष्टि, अभी कोई व्रतों का अंगीकार नहीं है, गृहस्थ दशा है उसकी। तो कहते गृहस्थपणामा रहेलो जीव पण, ये लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ऐसी मान्यता चल रही है, ये मुनि होने पर ही आत्मा का अनुभव होता है, तब तक वो श्रद्धा है, व्यवहार श्रद्धा है, बस शास्त्र से जान लिया उसने, ऐसा है नहीं। पंचाध्याय में हमने बहुत उस पर विषय बहुत चर्चा की थी, है ना, कि गृहस्थपनामा रहेलो जीव पण ज्ञानानंद स्वरूप आत्मानु भान करीने अंतरात्मा थई शके छे। हजी राग द्वेष होवा छता आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप छे एवं सम्यक भान थई शके छे। देखो पर्याय में राग द्वेष होने पर भी स्वभाव से मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, वो उसकी भिन्नता का ज्ञान अनुभव होता है। समकीति धर्मात्मा जीव अजीव तत्वों ने भ्रांति रहित यथार्थ पने जाने छे, जीव ने जीव रूपे जाने छे और रागादि ने रागादि रूपे जाने छे। यानी उन्होंने अनुभव पूर्वक, क्योंकि जीव को जीव रूप जानता है, यानी उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव लिया, उस समय उसके ज्ञान में वो रागादि उसके ज्ञान का विषय नहीं हो रहा था, वो तो बुद्धिपूर्वक में था तब। यानी उसने रागादि को रागादि रूप जानता है, देहादि ने अजीव रूप जाने छे, देहादि ने के रागादि ने आत्मानु स्वरूप ते मानता नथी। देखो जाने छे के लिए जीव को जीव पने जानता है, राग को राग पने जानता है, देहादि को देहादि पने जानता है, सबको जानता है, जो जैसा है उसको जानता है, और मानता है मैं क्या लिया, देहादि को रागादि को आत्मा का स्वरूप नहीं मानता। तो आत्मा का स्वरूप किसको मानता है? तो ज्ञान आनंद स्वरूप जो है वह मैं हूँ, आत्मा है, ऐसा मानता है। मानने के लिए मात्र एकमात्र स्व लिया, और जानने के लिए स्व पर सबको ले लिया, पर स्व पर को एक करके जानता ऐसा नहीं कहा, जो जैसा है उसको वैसा जानता है। ज्ञान भी तो सम्यक है ना। बहुत पहले, बहुत ही पहले की बात है, जयपुर हम जाते थे तभी किसी विद्वान के साथ चर्चा ऐसे होती कि हमारे रूम के सामने थे वो उन्हें बोला ये तो सम्यक दर्शन का विषय है, मात्र स्व है, सम्यक ज्ञान का विषय स्व पर पूरी दुनिया है। तो क्या ऐसा होता है कि दोनों का विषय अलग होता है? क्या सम्यक दर्शन का विषय अलग है और सम्यक ज्ञान का विषय अलग है? हम ऐसा ही होता है। समझ में आती बात? सम्यक ज्ञान हुआ जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ, परंतु आत्मा का अनुभव से बाहर रह गए, सम्यक ज्ञान चला गया क्या उसका? सम्यक ज्ञान स्व को जानेगा, पर को जानेगा, राग को जानेगा, दुनिया को जानेगा, सबको जानेगा। और सम्यक दर्शन का विषय, विषय जिसको हम कहेंगे, दृष्टि का विषय जिसको कहेंगे, मात्र स्व। जीव तो ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप छे। यहाँ पॉइंट्स लिखे उन्होंने, देह
ज्ञान कैसा है वैसा जानेगा, मतलब ये है तो ये जानेगा और उपाधि है तो उपाधि जानेगा, सब में ज्ञान स्वयं पर को जानेगा।
हाँ, जानेगा
पर को जानेगा।
हाँ,
स्वयं और पर का मतलब यही है कि वो जैसा है वैसा जानेगा,
जैसा है जो ऐसा जानेगा। पुद्गल को वो अजीव अचेतन है ऐसा जाएगा, अन्य जो जीव है उसको वो तो जीव अलग है, वो भी ज्ञान दर्शन वाला है ऐसा जानेगा। भगवान को भगवान स्वरूप, परमात्मा को जानेगा, हाँ वो उसको दुख रूप है ऐसा जानेगा। वो तो तत्वों के बात है, इन्हें तत्वों की भाषा में जैसा है वैसा जानेगा। द्रव्यों की बात है या उसकी परिणमन व्यवस्था है, भले उसने आगम से जान लिया है पहले, परंतु अभी अनुभव पूर्वक उसने नक्की कर दिया, आत्मा का अनुभव किया तो भिन्न, इन सबसे भिन्न मैं अलग हूँ, ये उसने अनुभव पूर्वक जान लिया है। अभी उसका जानना जो है वो सम्यक है, सही है। भले आत्मा में अनंत गुण है, उसके असंख्यात प्रदेश है, उसने तो आगम से नक्की किया था, आगम से उसने जाना था, परंतु अभी उसका जो जानना है वो सम्यक कहला रहा है। पहले सही जान रहा था, वो आगम से जाना था, परोक्ष जाना था, अभी भी आत्मा के प्रदेश तो दिखे नहीं उसको, मैंने अनुभव प्रत्यक्ष हो गया तो अभी उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम दे दिया।
आपका ये कहना है सम्यक ज्ञानी जो है वो ज्ञान जो है उसका, वो जैसा पदार्थ है जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानेगा क्या? नहीं।
हाँ वही है, ये गेय वो भी उसका नक्की होता है, वो तो मान्यता में भी होता है ज्ञान में भी होता है।
सात तत्वों हाँ। की बात की तो जो का त्यों श्रद्धा, मतलब
श्रद्धान भी जो का त्यों हुआ और फिर जानने में भी जो का त्यों हो जाता है। हाँ उसी समय, एक ही समय में सम्यक दर्शन हुआ,
दर्शन हुआ उस समय,
उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, उसी समय सम्यक चरित्र हुआ, तीनों एक समय में हो गए, तीनों ही पूरे आत्मा के जितने अनंत गुण है उनमें सम्यक अंश चालू हो गया। कोई तो पूरा सम्यक हुआ और कोई तो आंशिक सम्यक हुआ। ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहेंगे, पर वो केवल ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, यानी उसके परिपूर्णता नहीं आई, सम्यकपना तो आ गया। ऐसे चारित्र सम्यक हुआ है, परंतु पूर्णता तो जब जाके जिसको हम कहेंगे तो पूर्ण वितरागता है, वो तो दसवें के बाद आएगी, ग्यारहवें बारहवें में।
अब उसका जानना देखना अब
हाँ, अभी सही हुआ, अभी उसका सम्यक यानी यथार्थ हुआ, अभी ज्ञान श्रद्धान यथार्थ हो गया। चारित्र में कहेंगे अभी वितरागता स्टार्ट हो गई है, अभी कचास है, जितने अंश में राग है, अभी बंध का कारण क्या है? वो राग है। अभी तक क्या था? तो मिथ्या श्रद्धा भी बंध का कारण। अब जितना आंशिक जितना राग है उतना उसके कारण उसके बंध है। किसी क्रिया के कारण बंध नहीं है और क्रिया नहीं करने से बंध नहीं है, बंध उसके राग के कारण है। जितना शुभ हो या अशुभ हो उससे बंध है उसको। कल अपनी बात हुई थी ना, राग से ही बंध होता है।
आपके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या है कि अभी हम हमारी बात करते हैं, आपके हमें तो मालूम नहीं है कि अभी आगम के अनुसार जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा हमने जाना है, बिल्कुल जैसे आगम में बताया है, और जो कोई सम्यक दृष्टि जीव है वो जाने ऐसा हमने बिल्कुल जान लिया है, ज्ञान हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। जिस वक्त श्रद्धा उसको एक्सेप्ट करती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट सील लगाता है तो लॉ पास हो जाता है, वैसे यहाँ सम्यक जो श्रद्धा गुण है वो श्रद्धा एक्सेप्ट करेगी, अरे मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव ही हूँ, तो उस समय जो ज्ञान, जो पहले सम्यक तो होने के पहले जो ज्ञान था, वही ज्ञान अभी चालू है, उस ज्ञान को अभी सम्यक ज्ञान कहेंगे। उसके पहले वही ज्ञान था, उसको हम मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि उसको श्रद्धा गुण ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इस तरह से लेना,
यानी जिस समय श्रद्धा ने एक्सेप्ट किया उसी समय अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई है, ज्ञान में भी कुछ विशेषता हुई है जो अब तक नहीं हुई थी, तब उसको हम सम्यक नाम उसको भी दे देंगे। दोनों का समय एक है, और जहाँ सम्यक होता है, सम्यक तो प्राप्ति का पहला समय है, उसी समय अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति भी होती ही होती है। दोनों का काल एक है, इसलिए कहते श्रद्धा ने किया तब उसको ज्ञान हमको सम्यक कहेंगे। तो सब हाँ, हम कहेंगे हमारी श्रद्धा ने मान लिया, वो उसका मानना वो मानना नहीं है। जैसे भगवान की वाणी है, हमने कबूल कर दिए, उसको श्रद्धा नहीं कहते। कबूल हुआ कब कहेंगे, उसके अनुभव किया तब, स्वानुभव से प्रमाण करना जब कहते हैं, ये उसकी बात है। आनंद गुण है पूरे पूरे अखंड आत्मा का, वो अतीन्द्रिय जो रस आनंद आया वो जाना, तो ये अनुभूति हुई, वो ज्ञान की पर्याय।
आनंद कौन से गुण की पर्याय?
आनंद क्या आनंद, पूरे सभी अनंत गुणों का एक रूप, ऐसा जो अनाकुलता, सुख गुण कहो आनंद गुण कहो, उसका परिणमन कहेंगे उसको। वो एक गुण का नाम दिया, परंतु है तो सभी पूरे अखंड। चारित्र में वो तो वहाँ तो शांति कहते उसको, वितरागी शांति, वितरागी शांति। देखो चारित्र में वो शांति रूप लेते हैं, और आनंद को वो आनंद का गुण अलग लेते हैं। अभी उसमें डिफरेंस करना है, इसलिए ये बात आई थी यहाँ कहीं तो, वितरागी शांति अपने 47 शक्तियों में आई थी बात। ये देखो ये जो पॉइंट्स दिए ना उन्होंने, फिर पढ़ते इसको। जीव तो ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप छे, देह वगैरह तो अजीव छे, ते जीव थी भिन्न छे, यानी वो अलग ही टाइप का द्रव्य, अचेतन द्रव्य। राग द्वेष अज्ञान ते दुखरूप भावो छे, एटले के ते आश्रव ने बंध रूप छे। अभी ये जो है तो जीव के परिणामों में, जीव के पर्यायों में मन है, वो दुखरूप भाव, विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र भाव ते जीव ने सुखरूप छे, ते संवर निर्जरा मोक्षनु कारण छे। यानी वो तो प्रकट करने योग्य है, और पूर्ण प्रकट करने योग्य तो मोक्ष दशा हो जाएगी। इसको हम प्रकट करने की अपेक्षा उसको उपादेय कहते। आम बधा तत्वों ने जेम छे तेम जानी ने, ये कहते हैं प्रयोजन भूत तत्वों का सही ज्ञान होना चाहिए। एक ज्ञानानंद स्वरूप पोताना आत्मा माज आत्मबुद्धि करे छे। देखो पहले तो जैसे तत्व है उसको जान लिया है, अब उसमें से मैंपना किसमें स्थापित करना है, तो अपने आत्मा में ही। देहादि ने पोता थी बाह्य जाने छे, राग द्वेष अज्ञान ने दुख रूप जानी ने छोड़े छे। तो राग को छोड़ दिया तो वितरागी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो अरविंद भाई। राग द्वेष अज्ञान ने दुख रूप जानी ने छोड़े छे, आत्मा को ग्रहण करता है, राग द्वेष को छोड़ता है। ग्रहण किया ने क्या किया?
जाना।
और ग्रहण नहीं किया, छोड़ा है ने क्या? उसको जानना छोड़ दिया। देखो देखो, राग को तो हमने राग नहीं किया, इन्हें हम उसका कंट्रोल किया ऐसा मानते हैं, छोड़ा हमने राग करना, छोड़ दिया ऐसा मान लेते हैं। हमने क्या किया राग का लक्षण, वो छूट गया ने? कैसे छूट गया? पहले हम राग को अपने में जानते थे, राग और ज्ञान एक मेक है ऐसा जानते थे। अब राग दुख रूप भाव है ऐसा हमने जान लिया, अब ये दुख रूप भाव से हटकर हम अपने ज्ञान आनंद स्वभाव भाव में उसको ग्रहण किया ने, उसको जानते रहे, उसको जानते रहे, तो वो तो राग द्वेष को अपना नहीं है करके जानना भी छोड़ दिया हमने उसको, उसका लक्ष्य छोड़ दिया, भिन्नता की और उसका लक्ष्य छोड़ दिया। नहीं तो उसके छोड़ने जाओ तो लक्ष्य उसका करना पड़ेगा। समझ में आती है? इसको इसको छोड़ दो तो इसको हम लक्ष्य, इसको छोड़ने के लिए इसका लक्ष्य करके इसको हम हटाएंगे। हमने क्या किया, हमने ये अपने से भिन्न है, हमने अपने ग्रहण किया तो हमने इसे छूट ही गया ना, वो तो छोड़ दिया उसको।
हाँ,
यानी वो तो कैसा जानकर, दुखरूप जानकर उसको ये मेरे में नहीं ऐसा नक्की कर दिया हमने। मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञान आनंदमय है, वो ज्ञान आनंदमय राग का प्रवेश नहीं है। भले एक ही आत्मा में दोनों ही भाव है, ज्ञान आनंद मेरा कायम ही रहने वाला स्वभाव भाव है, और ये राग तो क्षणिक है, दुखरूप भाव है, विभाव पर्याय है, पर्याय है अपनी, वो दोष रूप है, उसी के साथ भेद ज्ञान करना है, मुख्य तो वही बात है। ये दुखरूप जाने जान के छोड़ना, छोड़ना तो दूसरे पर्याय में, तो राग द्वेष जितने मात्रा में उतने हो गए कि नहीं, समय दृष्टि को तीन कषाय अभी बाकी है, तो उसके वो अबुद्धिपूर्वक में चला जाएगा, उसका लक्ष्य छोड़ दिया उसने, यही कहते हैं। नहीं नहीं, जैसा है वैसा तो पहले नक्की किया, ज्ञान ने निर्णय में लिया कि ये दुखरूप भाव है और मैं तो सुखरूप हूँ, ये नक्की कर लिया। परंतु वो स्व सन्मुख दशा में जो अपना नक्की किया है उसी में एकाग्र होना है। अभी तक क्या हो रहा है, राग द्वेष में एकमेक होकर उसी में एकाग्र हो रहा था, समझ में आती है बस। अभी उससे मैं भिन्न हूँ जानकर अपने में एकाग्र होना है, तो ये छूटा रहेगा अपने से। तो जो छूटा रहने पहले तो अनंतानुबंधी वाला था, अब उसने समय अपने स्वसन्मुख हुआ, अभी नेक्स्ट पर्याय में जो राग होगा वो अनंतानुबंधी वाला होगा ही नहीं। स्वसन्मुख दशा कर दी, सम्यक तो हुआ उसको, तो अभी चौथे गुणस्थान में गया, तो अप्रत्याखंड प्रत्याखंड संज्वलन वाले राग हो गए, अब अनंतानुबंधी वाला राग ही नहीं होगा। जब तक शुद्धोपयोग में है तब तक तो उसके वो तो अबुद्धिपूर्वक में है, परंतु कौन से वाले हैं, वो तीन कषाय वाले, समझ में आते हैं बात। वो उत्पन्न ही नहीं होगा, और कल आपने जो बात पूछी थी, अभी उसको बंद ही नहीं है, तो वहां कहेंगे अभी उसको राग भी नहीं है, वो किस अपेक्षा से लिया। वो जो अनंतानुबंधी ने तो तीन है जो नहीं के बराबर है, इसलिए नहीं है कहे, तीन कषाय के कारण होने वाला बंधन नहीं के बराबर है, उसको बंध ही नहीं ऐसा कहेंगे, अपेक्षावश है, सर्वथा बंध नहीं ऐसा नहीं है वहां पर। कोई चलती वो प्रतीति होती रहती है, क्योंकि उसने अपने को भिन्न जान लिया है। अभी अभी शरीर की अवस्था होगी, हाँ उसके अभी जो कहते हैं कि उसको अभी परिणाम ऐसे हो गए, जैसे नहाने के, धोने के, व्यापार धंधा करने के, खाने पीने के, अभी उससे तो अभी हटा नहीं है, वो चलता रहेगा, उसका सम्यक तो अभी बना रहेगा उसका, परंतु अभी मैं इससे भिन्न हूँ ये बात उसको घोकना रटना नहीं पड़ता है, उसकी प्रतीति बनी रहती, भले वो शुद्धोपयोग हो या शुभोपयोग। चौथे पांचवे वाला तो अशुभोपयोग में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नहीं रहेगा, तो उसका राग नहीं है, बंधन नहीं, ऐसा कहेंगे, यानी वो तो अपेक्षावश कहेंगे। वो छूट गया, हाँ वो छूट गया, तो अज्ञान ने, अज्ञान लिखा ना, अज्ञान को छोड़ गया, अभी समय ज्ञान हुआ।
अभी जैसा आपने बताया अनंतानुबंधी वहाँ राग नहीं रहेगा, अब बाकी जो राग है उसको गौण करके उसको राग नहीं है ऐसा कहेंगे, ये गौण वाली बात है।
नहीं तो अंतरात्मा के इतने भेद नहीं पड़ते चौथे से बारहवें तक के, डायरेक्ट अंतरात्मा हुआ परमात्मा ही हो जाता, समझ में आई ना बात। ये जो इतने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, गुणस्थान की जो बातें परिपाटी है, हाँ जितने उसके राग द्वेष है, जितनी वितरागता है, उसके अनुसार ये बातें हैं। हाँ, परंतु उसके लिए पूरा तत्व निर्णय सही होना चाहिए, तभी तो अनुभव होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश करे, कैसा भी ध्यान लगाने का प्रयत्न करे, क्योंकि आजकल तो सबको बहुत घाई है, तो पहले ध्यान की बात उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ न कुछ मैं कमी हो रही मेरे में, परंतु ये तत्व निर्णय की बात छूट जाती है। अभिप्राय में कहीं ना कहीं निमित्त से मेरा कार्य होगा या कोई अन्य अन्य ऐसी बातें बनी रहती उसके अभिप्राय में। जब तक अभिप्राय सही नहीं होता है तब वो उपयोग अपने स्व को नहीं पकड़े। पूरे जितने ये मुख्य सिद्धांत आते हैं ना, निमित्त उपादान संबंधी, क्रमबद्ध पर्याय संबंधी, पांच समवाय संबंधी, षटकार, कितने सारे हैं, निश्चय व्यवहार, ये अभाव वाली बात, तो इनका सही निर्णय नहीं होता है तब तक उसके वो अनुभव नहीं होगा, ये नक्की है।
तभी
हाँ उसमें स्वसन्मुखता की मुख्यता होनी चाहिए। वो खाली हमने वो तो पढ़ाई के तौर पर उसको रट लिया, पढ़ लिया, उसकी नहीं बात। एक तो वो भाव भाषण तक पहुंचना चाहिए और फिर स्वसन्मुखता की भी बात होनी चाहिए। अपनी महिमा अद्भुत ऐसे में, क्योंकि पूरे विश्व से अपनी महिमा आए बिना, अपने ज्ञायक की महिमा आए बिना वहां कैसे ज्ञान कॉन्सेंट्रेट होगा।
अरिहंतों और सिद्धों से भी अपनी महिमा आएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। यानी उसके लिए उसको कुछ ऐसे भाषा में रटना नहीं है कि मैं सिद्ध से भी बड़ा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में सोच रहा है, जो सर्वज्ञ पना क्या हो सकता है, वो प्रमुख क्या होता है, और उसी में वो सहज रूप से अपने आत्मा को विषय करके अनुभव हो जाता है। आम बधा तत्वों ने जेम छे तेम जानी ने, एक ज्ञानानंद स्वरूप पोताना आत्मा माज आत्मबुद्धि करे छे। देखो, सात तत्वों को भिन्न भिन्न उसने पहले जाना है, उसका निर्णय किया है। अब उसमें से स्व किस में है, जो मैं स्वयं जीव तत्व, मेरे लिए मैं अकेला ही हूँ, बाकी सारे जो अन्य जीव भी अजीव तत्व में छोड़ देते हैं, अध्यात्म की अपेक्षा लगाते हैं, तो कि उसी में आत्मबुद्धि करता है, मैं पना मात्र उसमें स्थापित किया, आश्रव अपने, ये सारे जो आगे वाली हो तो अजीव तो परद्रव्य भी है, अन्य जीव भी उसके अंदर डाल दिए हमने, परंतु आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तो जीव की पर्याय है। अब इसमें भी कहीं पर भी स्व स्थापित नहीं करना है। आत्मबुद्धि किसमें? जीव तत्व, जो कायम ही रहने वाला स्वभाव भाव, वह मैं हूं, ऐसे उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है। देहादि ने पोता थी बाह्य जाने छे, अजीव तत्व हो गया। राग द्वेष अज्ञान ने दुख रूप जानी ने छोड़े छे, आश्रव बंध तत्व हुआ। सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र ने सुख रूप जानी ने आदरे छे, ने वो प्रकट करने योग्य है ना। आवा जीव ने अंतरात्मा कहे छे, आश्रय करने योग्य तो मात्र एक स्व जीव तत्व हुआ, बाकी प्रकट करने की अपेक्षा से संवर निजरा मोक्ष को भी प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय कह दिया। आओ अंतरात्मपणु चौथा गुणस्थान थी शुरू करीने बारमा गुणस्थान सुधी होय छे। ज्ञान स्वरूप जीव अने शरीरादि अजीव ते बन्ने पदार्थो भिन्न भिन्न छे। यानी यहाँ एक जीव है, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का ढेर पड़ा है, यहाँ कुछ कर्म रूप भी है, शरीर रूप भी है, तो कहते वो दोनों ही पदार्थ भिन्न भिन्न है। छता इन स्पाइट अज्ञानी जीव भ्रांति थी ते बनने ने एक माने, यह मैं हूं ऐसा दोनों को मिलकर। शरीर आदि ना कार्यों ने आत्मा ना माने छे, ने आत्मा ने शरीर वगैरह बाह्य पदार्थ होती हित हित माने छे। आत्मा ने मुझको, और ये मैं किसको कहा? शरीर आदि को। आत्मा को भिन्न पहचान ही नहीं है, आत्मा ने मैं, और उसका मैं कौन है? शरीर। यही कहते ना, शरीर आदि ना कार्यों ने आत्मा ना माने छे। यानी शरीर से मैं कुछ भिन्न हूं, एंटिटी मेरी डिफरेंट है, ये उसने स्वीकार ही नहीं किया, यानी उस पर उसका विचार भी नहीं हो रहा। और वो बाह्य पदार्थों से अपने को हित हित मानता है। वरी ज्ञान वैराग्य रूप भाव આત્માને હિતરૂપ હોવા છતાં તેમાં તે પ્રવૃત્તિ નથી કરતો. જો હિતરૂપ ભાવ હૈ ઉસમે વો પ્રવૃત્તિ નહીં હોતી હૈ, તેમાં તો અરુચિ અને કંટાળો કરે છે. તથા રાગ દ્વેષ મોહરૂપ ભાવો જીવોને અહિતરૂપ હોવા છતાં તેમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરે છે. યાને ઉસકી પ્રવૃત્તિ હમને તો બાકી સબ હમને નિવૃત્તિ લી ઓર હમ ઇસી મે પ્રવૃત્તિ કરતે હૈ. કિસ કિસ મે? સ્વાધ્યાય મે કરતે હૈ ઓર દૂસરો કો સિખાને મે કરતે હૈ ઓર ક્યા ક્યા કરતે હૈ. યાને કિસ મે પ્રવૃત્તિ હુઈ ઉસકી? રાગ મે હુઈ ના, રાગ મે પ્રવૃત્તિ હુઈ. તેની રુચિ છોડતો નથી. યે રાગ દ્વેષ હોના વો બાત અલગ હૈ ઓર ઉસકી રુચિ બાત અલગ હૈ. उसको अपने से भिन्न जानकर रुचि अपनी होनी चाहिए. चौड़ाला में सभी बातें परद्रव्य नय भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है. अपने में रुचि को ही वहां सम्यक तो कहा. ये रुचि वो तो श्रद्धा की पर्याय बताई, श्रद्धा वो तो उसके पर्यायवाची बताए रुचि को. ये तो सम्यक तो मार्गणा में तो मिथ्या रुचि ऐसा उसका आता है. मिथ्या रुचि सासाधन रुचि ऐसे उसके रुचि शब्द जोड़ते उसके आगे. આ પ્રમાણે જીવ અજીવ વગેરે તત્વોના સ્વરૂપમાં ભ્રાંતિથી પ્રવર્તે છે તે જીવ બહિરાત્મા છે. ભ્રાંતિથી પ્રવર્તે છે, ભ્રાંતિ અને ઉસકે જ્ઞાન શ્રદ્ધાન મેં ભ્રાંતિ ઓર પ્રવૃત્તિ મેં ચારિત્ર કી પર્યાય લેના પ્રવર્તે છે અને ઉસી મેં વો તો લીન રહેતા. એ ભ્રાંતિ અને મોહ રાગ, ભ્રાંતિ અને મોહ એને ઉસકા મિથ્યાત્વ ઓર ઉસકે કારણ વહાં રાગદ્વેષ હોતા હૈ, ઉસી મેં ઉસકી પ્રવૃત્તિ ચલતી રહેતી. ધર્મી તો જાણે છે કે ધર્મી અને સમ્ય દૃષ્ટિ તો જાણે છે હું જડથી ભિન્ન છું, દેહાદી મારા નથી, હું તેનો નથી. જાણે છે ને ઇસને અનુભવપૂર્વક જાણ લીયા. મારો તો એક જ્ઞાન દર્શન લક્ષણરૂપ શાશ્વત આત્મા જ છે. એ સિવાય સંયોગ લક્ષણવાળા જે કોઈ ભાવો છે તે બધાએ મારાથી બાહ્ય છે. ચૈતન્યના આશ્રયે જ્ઞાન વૈરાગ્યરૂપ ભાવ પ્રગટે તે મને હિતરૂપ છે. એને સ્વભાવ કે આશ્રય છે, જો સ્વભાવ ભાવ પ્રકટ હોગા વો હિતરૂપ ભાવ હૈ. ને બાહ્ય પદાર્થના આશ્રયે રાગાદી ભાવો થાય તે મને અહિતરૂપ છે. એ બાહ્ય પદાર્થ ઉસકો રાગાદી નહીં કર રહે, વો સ્વયં હિ બાહ્ય પદાર્થો કા લક્ષ્ય કર કરકે રાગાદી રૂપ પરિણમિત હોતા હૈ. और फिर क्यों राग रूप होता है? इष्ट अनिष्ट मान लेता है तो राग द्वेष हो जाते हैं. आ प्रमाणे जीव अजीव वगैरह तत्वों ने प्रतीति करीने अंतर्मुख चैतन्य स्वरूप में वर्ते छे ते अंतरात्मा छे. ये वर्तना है ने उसमें प्रवृत्ति होती है. अभी उसकी अंतर में ही एकाग्रता होती है, बाह्य प्रवृत्ति का रस नहीं रहा. रुचि तो अंतर में रहती है, इसलिए बारंबार उसको અંતરંગ મે વર્તતા હૈ એસા લિખા હૈ. અને રાગ દ્વેષ મોહનો સર્વથા ક્ષય કરીને કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત અતિન્દ્રિય આનંદ. એક કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન કે બાદ એક એક કોમા લગાવે. અને અનંત વીર્ય જેમને પ્રગટી ગયા છે એને જીસકો અનંત ચતુષ્ટય કહે તે પરમાત્મા છે. તેમાં અરિહંત પરમાત્મા તે સકલ પરમાત્મા છે અને સિદ્ધ પરમાત્મા તે નિકલ પરમાત્મા છે. ચાર ઘાતી કર્મોના ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટય તો બંનેને સરખા છે. ક્યાં કહેતે ઘાતી કર્મ તો દોનો કોઈ નહીં હૈ, ના અરિહંત કોઈ નહીં સિદ્ધ કોઈ, તો અનંત ચતુષ્ટય તો દોનો મેં સેમ હૈ, સરખા હૈ. અરિહંત પરમાત્માને ચાર અઘાતી કર્મો બાકી છે, તેનો ક્ષણે ક્ષણે ક્ષય થતો જાય છે. એસા ક્યું લિખા? ક્ષણે ક્ષણે ક્ષય થતો જાય છે. હા, ઉદય ખીર જા રહે ને. કેવલ ઉદય નહીં હો રહા હૈ તો નિર્જરા ભી હો રહી હૈ. અસંખ્યાત ગુના મેક્ઝિમમ તો યહીં પર હો ગઈ નિર્જરા. નયા બંધ નહીં ઓર પુરાના ઇતની અસંખ્યાત ગુના અસંખ્યાત ગુના અસંખ્યાત ગુના હર સમય વો નિર્જરા ચલ રહી. इसलिए कहते कि क्षण क्षण क्षय थतो जाय छे। बहार मां समोसरणादि दिव्य वैभव होय छे तेवो परम हितोपदेशक छे। हजी शरीरना संयोग सहित होवाती ते सकल परमात्मा छे। सिद्ध परमात्मा आठे कर्मोथी रहित लोकनी टोचे विराजमान छे। ने लोकाग्रक पर जिसे सिद्ध शिला के ऊपर तीन वात वलय है, अंतिम वात वलय के ऊपरी भाग में वहां विराजमान है। अनंत आनंदना अनुभव मां कृतकृत्यपने सादी अनंत काल विराजे छे। सादी अनंत काल क्यों कहा आपको पता है? सादी अनंत का अर्थ क्या होता है? एक होता अनादि, यानी जिसको शुरुआत दे वो अनादि। तो सादी किसको कहेंगे? जिसकी शुरुआत हुई। ये किसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं? सिद्ध पद की प्राप्ति हुई, जो पहले नहीं थी वो प्राप्त हुई। यानी केवल ज्ञान हुआ है अरिहंत दशा में, फिर अनंत आनंद वगैरह वो शुरू हुआ अरिहंत दशा से ही। अब वो कितने काल तक रहेगा? अभी तो कुटने वाला, वो कायम सिद्ध दशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा चलेगी। तो अभी उनका ये स्वरूप जो है, सिद्ध दशा जो प्रकृति है, प्रवाह की अपेक्षा कैसी है? सादी अनंत काल। नहीं समझे? मिथ्यात्व जिस समय दर्शन हुआ है किसी को, तो अनादि से मिथ्यात्व चला रहा था, उसको क्या कहेंगे? अभी समय दर्शन हुआ, वो अंतरात्मा हो गया, तो उसके मिथ्यात्व के लिए क्या कहेंगे? अनादि से था ना, अब उसको क्या कहेंगे? अनादि शांत। देखो चार शब्द आते हैं, एक है अनादि, एक है सादी, एक है शांत और एक है अनंत। तो मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा था, अभी वो नष्ट हुआ, तो कहेंगे अनादि शांत। अभी किसी को क्षायिक समय को हुआ, अभी वो कितने काल तक रहेगा? अनंत काल तक। तो उसको कहेंगे सादी अनंत। यह सिद्ध दशा की बात है। एक बार प्रकट होने पर अनंत काल तक वो चलती ही रहेगी। पहले संसार दशा थे, इसलिए इसको सादी अनंत कह दिया। शरीर आदि नो संयोग छूटी गयो छे, तेथी तेमने निकल परमात्मा कहवाय छे। अब यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। नलिन में